देखो कितने अच्छे मौसम में बाबा की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है, सब फ्रेश है। तो आज का हमारा विषय है दिव्य बुद्धि। शरीर को कौन चलाता है? हाँ, आत्मा। और आत्मा में क्या होता है? मन, बुद्धि और संस्कार। जैसे हमारे संस्कार होते हैं, आज तक जैसे भी संस्कार जिसके हैं उसके अनुसार क्या आता है मन में? संकल्प आता है। दुनिया के लोग तो मन को दोषी ठहराते हैं कि मन भागता है, मन घोड़ा है, मन हमें भटकाता है, परंतु वास्तव में जड़ में तो संस्कार है ना। तो जैसे संस्कार होंगे वैसे संकल्प आएंगे। अब अगर किसी टैंक में हरा पानी भरा हुआ है तो उसकी टूटी से कौन सा पानी आएगा? हरा आएगा। अगर गर्म भरा हुआ है तो गर्म आएगा, ठंडा भरा हुआ है तो ठंडा आएगा। तो जैसे संस्कार भरे हुए हैं तो मन रूपी टूटी से वैसा ही संकल्प आएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि भिन्न भिन्न आत्माओं को भिन्न भिन्न संकल्प आते हैं। अच्छा, अब संकल्प तो आते ही रहते हैं। आप देखेंगे कि मन का काम ही है संकल्प करना, या संकल्प का ही नाम मन है, ठीक है ना। तो संकल्प तो आते ही रहते हैं, कोई ऐसा समय नहीं है जबकि संकल्प नहीं आते, क्योंकि मन चेतन है, आत्मा चेतन है। अगर मान लो जैसे हठ योगी करते हैं कि संकल्प को रोको, तो संकल्प को आप रोक सकते हैं? हाँ, संकल्प को बिल्कुल बंद कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता आप में से। हाँ नहीं, जो प्रश्न है वो बताओ, कोई ऐसी आत्मा इसमें है जो संकल्प को रोक सकती है तो हाथ उठाओ। इतनी भी ताकत नहीं? अच्छा, एक दो में है। हाँ बहुत अच्छा। हाँ नहीं, सन्यासी नहीं, हम आपसे बात करते हैं। अच्छा भाई, कैसे रोक सकते हो बताओ? बुद्धि को कंट्रोल कर लो। ठीक, कितनी देर रोक सकते हो? हाँ हाँ हाँ, थोड़े टाइम के लिए रोक सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, संकल्प को रोकना भी तो एक संकल्प है ना, क्या नहीं? कि मैंने संकल्प को रोका तो दूसरा संकल्प किया कि इस संकल्प को रोकूं, है ना। तो संकल्प तो चला ना। इसलिए जैसा कहा जाता है कि संकल्प को आप परिवर्तित कर सकते हैं, एक संकल्प की जगह दूसरा ला सकते हैं। ऐसे तो अपने शरीर को भी आप चला भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं। जब संकल्प करोगे चल तो शरीर चलेगा, संकल्प करोगे रुक जा तो रुक जाएगा। अभी आप बैठे हैं, संकल्प करो उठ जाओ, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओगे। तो संकल्प चलता ही रहता है और संकल्प के अनुसार ही फिर बाकी चीज होती है, वाचा आती है, कर्मना आती है। परंतु संकल्प क्योंकि चलता ही रहता है हर समय, तो सारे संकल्प तो काम में नहीं आ सकते। क्या आ सकते हैं? अब संकल्प तो चलते ही रहेंगे। आप यहां बैठे हैं, आपका संकल्प चलेगा रेलवे रिजर्वेशन करा लूं, मेरे कपड़े भीग रहे हैं वो धोए नहीं हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इतने सारे संकल्पों को आप वाचा और कर्मना में कैसे लाओगे? इसलिए संकल्पों के ऊपर एक और शक्ति है जिसका नाम है बुद्धि। तो जब बहुत सारे संकल्प लगातार उठते रहते हैं तो बुद्धि उसके ऊपर ऑटोमेटिक निर्णय करती रहती है। क्या निर्णय करती है बुद्धि? कि भाई ये काम करना है या नहीं करना है, हाँ या ना। अब मान लो आपको जेब में पैसे हैं, आप दुकान में गए, देखा बहुत अच्छा कोट पड़ा है, खरीद लें। तो संकल्प ने कोट को देखा, कहा खरीद लो। अच्छा, फिर बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि कहेगी अरे भाई इतने पैसे कोट पर खर्च दोगे तो बाकी काम कहां से चलेगा है? तुमने ये भी करना है, ये भी करना है, इस महीने तो ये काम भी है। तो बुद्धि कहेगी नहीं, अभी नहीं खरीद सकते तुम। तो ये किसने किया? अंदर ही अंदर होता है, लेकिन बुद्धि निर्णय करती रहती है कि काम को करना है या नहीं करना है, ये निर्णय बुद्धि करती है। जब बुद्धि से भी पास हो जाए संकल्प कि करना है, तो फिर क्या होता है? वाचा या कर्मना में आ जाता है। और जब वाचा या कर्मना में आ जाता है, फिर उसका प्रभाव जो है, एक बारी तीर चल गया, वाचा से तीर चल गया है ना, तीर कमान होता है ना, तो कमान कैसा होता है? जैसे होंठ है ना, ऐसा कमान होता है, और जैसी जीभ है वैसा तीर होता है, ठीक है ना। तो अगर आपने तीर एक बारी चला दिया, किसी को कुछ कह दिया, तो कहते हैं ना जवान के तीर बहुत जोर से जाके लगते हैं, उल्टा किसी को कह दो उसको दर्द होना शुरू हो जाएगा। मीठा बोल दोगे तो मीठा तीर लगेगा। इस वास्ते ज्ञान का भी तीर लगता है। तो वाचा में आ गया या कर्मना में आ गया। तो कहने का भाव ये है, ये तो हम सब जानते हैं कि कैसे सिस्टम चलता है, संकल्पों से, संस्कार से संकल्प, संकल्प के बाद उसको टेस्ट होता है बुद्धि में, उसके बाद जितना संकल्प पास ऑन हो जाए उसको फिर वाचा या कर्मना में आता है, और उसका प्रभाव फिर लेप के रूप में, लेप क्षेप के रूप में फिर संस्कारों पर पड़ता है। ये विद्या भी हमको शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा द्वारा पढ़ाई है। दुनिया वालों को ये भी पता नहीं, वो क्या समझते हैं कि आत्मा निर्लेप है, शरीर को ही लगता है सब। परंतु बाबा कहता है, ये नोट करने की बात है, बाबा कहता है आत्मा निर्लेप नहीं है, परंतु आत्मस्थिति की अवस्था निर्लेप अवस्था है। अगर आप आत्मस्थिति में स्थित रहेंगे तो आप माया की लेप क्षेप से परे रहेंगे, बाकी जो कर्म करेंगे वो तो आत्मा को ऊपर उसका प्रभाव आएगा ही, अच्छा भी आएगा खराब भी आएगा। अगर आत्मा निर्लेप हो जाए तो अच्छा प्रभाव भी नहीं आ सकता, अच्छा तो आना है ना, आत्मा को देव आत्मा बनना है। अच्छा, अब एक प्रश्न ये है कि जब हम सबको बुद्धि मिली ही हुई है, हर एक के पास बुद्धि तो है ना, जो बुद्धू होता है उसके पास भी बुद्धि होती है, अपनी तरह की तो होती है। तो जब हमें बुद्धि मिली ही हुई है और बुद्धि का काम ही है जजमेंट करना, तो फिर बुद्धि ठीक जजमेंट करनी चाहिए कि संकल्प आया, अगर खराब आया, उल्टा आया, उसको रोक दे, ताकि बुद्धि की जजमेंट से पास होने के बाद तो संकल्प का जो रूप हो वाचा कर्मना में अच्छा ही आना चाहिए। रखा काहे कोई बुद्धि को? अगर कोई चौकीदार रखे कि भाई यहां से चोर को नहीं आने देना, और चौकीदार के होते भी चोर आ जाए तो कह दी थोड़े बहुत चोर निकल गए, तो चौकीदार किस काम का हुआ, ठीक है ना। अब देखना यह है कि क्या हमारी बुद्धि पक्का चौकीदार है, ऐसा चौकीदार, ऐसा पहरेदार, ऐसा चेक करने वाला चेकर जो कि किसी भी अयथार्थ संकल्प को क्रॉस नहीं करने दे, ठीक है ना। अब मान लो कोई भोजन किसी बड़े वीआईपी को कराते हैं, तो बाबा ने बताया है उसको टेस्ट किया जाता है, उस भोजन को उसको खिलाने से पहले किसी जानवर को खिलाएंगे, कुत्ते या बिल्ली को खिलाएंगे कि देखो इसमें जहर तो नहीं मिला हुआ, अगर ठीक होगा तो फिर उसको खिलाएंगे। बड़े बड़े लोगों का टेस्ट होता है भोजन। यहां भी जब प्रेसिडेंट आए थे या वाइस प्रेसिडेंट आए थे तो उनका भोजन टेस्ट हुआ था, उसका थोड़ा हिस्सा रख भी लेते हैं वो, ताकि लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करें, अगर कोई बात बिगड़ जाए तो उसको टेस्ट करें। तो बुद्धि जो है वो संकल्प रूपी भोजन को अच्छी तरह टेस्ट करके कि आगे स्वीकार करे, और अगर वो संकल्प अयथार्थ है, व्यर्थ है या विकल्प है या नुकसान करने वाला है तो उसको रोक दे। परंतु प्रैक्टिकल में ऐसा होता है, क्या हमारी बुद्धि सचमुच इतनी पक्की चकर है जो कि व्यर्थ संकल्प को, खराब संकल्प को वाचा और कर्मना में आने से रोक दे? आपका अनुभव क्या कहता है? है? हैं? जो कहते हैं है वो हाथ उठाओ, जोर से उठाओ, जरा ऊंचा। हाँ, थोड़े हैं, ठीक है। वास्तव में अगर बुद्धि सालम होती, बुद्धि ठीक होती, फिर तो बहुत अच्छी बात थी। परंतु बुद्धि भी जैसी क्वालिटी की आत्मा होती है, वैसी क्वालिटी के ही उसके मन, बुद्धि, संस्कार तीनों चीज होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि संकल्प हो तमोगुणी, मन हो तमोगुणी और बुद्धि, संस्कार हो तमोगुणी और बुद्धि हो सतोगुणी। ऐसा हो सकता है? कोई व्यक्ति कहे कि ये आदमी तो काला है, इसका नाक बड़ा सुंदर है, ऐसा हो सकता है? तो टोटली होगा ना जैसा होगा। ये आदमी बूढ़ा हो गया लेकिन इसका हाथ जवान है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसी प्रकार से ये कपड़ा तो पुराना हो गया, इसकी जेब नई है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अब आप सोच सकते हैं कि क्या वजह है कि बुद्धि का काम निर्णय करना है, बुद्धि का काम हमें बचाना है, कर्म और वाचा में आने से पहले संकल्प को चेक करना है। परंतु फिर भी प्रैक्टिकली आप रोज देखते हैं कि या तो बुद्धि जोर से कोई संकल्प आता है, मन के बहाव में आ जाएगी, संकल्प के बहाव में आ जाएगी, तो क्या कहा जाएगा कि पुराने संस्कार है ना, इसलिए ये काम हो गया। पुराने संस्कारों की फोर्स थी, आदत थी, इसलिए ये काम हो गया। कोई क्रोध करता है मान लो, तो क्या कहते हैं कि जोर से आदत पड़ी हुई है ना कई जन्मों से, तो इसलिए क्रोध हो गया। बुद्धि उस वक्त कहां थी? बुद्धि से तो पास हुआ ना, कोई घटना आई, सामने आई, परीक्षा आई, तो बुद्धि तो थी ना। पहले संकल्प आया तो बुद्धि तो ऑटोमेटिक फटाफट काम करती है। कोई भी संकल्प, बुद्धि और मन तो साथ साथ रहते हैं, बुद्धि के निर्णय के बिना तो संकल्प हो ही नहीं सकता कर्म में। क्यों? अब मान लो आपने किसी पर क्रोध करना है और बहुत वो बलवान व्यक्ति है, पावरफुल है, या पूरा झुंड है, 10 आदमी आपके सामने खड़े हैं, आपको क्रोध आता भी है, तो आप लड़ने के लिए तैयार भी हो जाए मान लो, तो बुद्धि क्या कहेगी कि भाई इनसे लड़ोगे, जरा वासा कुछ करोगे तो पिटाई हो जाएगी। तो बुद्धि कहेगी चुप रहो, अपने क्रोध को अंदर ही रखो, कहेगी ना। इसलिए बुद्धि तो साथ होती है, और वही अगर कोई अकेला व्यक्ति मिल जाए उन 10 में से, तो कहे उस दिन तो तुम ऐसे कर रहे थे, आओ तुमको आज बताते हैं। क्योंकि बुद्धि को पता है, बुद्धि ने निर्णय दिया कि इस वक्त मुकाबला ठीक है। अच्छा, तो इसलिए कोई भी ऐसा संकल्प नहीं है, क्योंकि मशीन ही ऐसी बनी हुई है कि बुद्धि के थ्रू तो पास होता ही है। परंतु जैसा आपको बताया कि हमारी बुद्धि वैसी ही होती है जैसी टोटल आत्मा की स्थिति होती है, इसी वजह से बुद्धि के ऊपर हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते। वरना आजकल के पढ़े लिखे लोग यही तो कहते हैं, कहते हैं धर्म कर्म में क्या रखा है, ज्ञान ध्यान में क्या है जी, रोज रोज जाके क्या करोगे, हमको पता ही है अच्छा क्या है बुरा क्या है, पता ही है, बस यही तो ज्ञान है ना, कि अच्छा करो, बुरा ना करो, बुरे से बचने की कोशिश करो, किसी का नुकसान ना करो, बस यही ज्ञान है ना। तो वो समझते हम तो पढ़े लिखे हैं, हमारी बुद्धि में ये बात है अच्छा क्या है बुरा क्या है हम जानते हैं, तो फिर क्या जरूरत है रोज जाके ये सुने अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो तो हमें पता ही है। परंतु यहीं पर वो धोखा खाते हैं कि पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन पास हो जाता है बुरा भी और कर्म में आ जाता है, और उसका फल फिर दुख के रूप में भोगना पड़ता है। ऐसा दुनिया में कौन सा व्यक्ति होगा जो सुबह दिन शुरू होने पे ये सोचेगा कि मैं दुख लेकर आऊं, शाम तक दुख इकट्ठा करके लाऊं, अशांति लाऊं, ऐसा तो कोई नहीं। चाहे लोभी है, चाहे क्रोधी है, चाहे कामी है, चाहे कैसा भी है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे कोई है, एम तो उसका यही रहता है कि सुबह उठे हैं, शाम तक दुनिया में जाएंगे। जैसा भी उसकी वृत्ति है, डाकू है, कोई है, तो वो सोचेगा तो यही कि अपना फायदा करके शाम को घर आएंगे। परंतु किसी ना किसी प्रकार का दुख अशांति उसको घेर लेती है, रोज ऐसा ही होता है, अगले दिन फिर ऐसा सोचता है, क्योंकि उनको इसकी जड़ नहीं पता कि दुख और अशांति का कारण क्या है और दुख और अशांति को दूर करने का तरीका क्या है। इसीलिए वो अपनी बुद्धि पर भरोसा करके अपना काम करते हैं, ठीक है ना। और कहा भी गया है कि दूसरे की दौलत और अपनी अकल ज्यादा दिखाई देती है। हर एक व्यक्ति को अपनी अकल बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि अपनी है ना, हर वक्त वही काम देती है। इसलिए अकल कैसी भी हो, लेकिन अकल जो है, बुद्धि जो है, वो अपनी बुद्धि बहुत तेज लगती है। यहां तक भी होता है कि भगवान भी जब हमको बुद्धि देने आते हैं तो हम भगवान द्वारा दी हुई बुद्धि को भी अपनी बुद्धि के थर्मामीटर से नापते हैं कि भगवान ने जो बुद्धि दी है ये ठीक है मेरे लिए, इसको स्वीकार करूं या ना करूं। इसका भी कारण यही है कि हम अपनी बुद्धि, हर व्यक्ति अपनी अकल को बहुत अच्छा समझता है, लेकिन ये बुद्धि ही हमें धोखा देती है। अगर सचमुच बुद्धि धोखा देना बंद कर दे तो संस्कार कैसे भी हो, मन में संकल्प कैसे भी आए, लेकिन बुद्धि सालम है तो हम बच जाएंगे, ठीक है ना। जैसे डिफेंस होता है, तीन चार तरीके से रुकावट की जाती है कि यहां पहले चोर को पकड़ो, नहीं तो यहां पकड़ो, नहीं तो यहां पकड़ो, बिल्कुल ही अंदर आ जाओ तो फिर दूसरी बात है। तो पहले पहले तो संस्कार अच्छे हो तो संकल्प बुरे पैदा ही ना हो। अच्छा पैदा हो गए तो बुद्धि जो है वह उसको रोक दे तो भी हम बच जाए, लेकिन ये तो सारे का सारा एक ही जैसे एक ही साथ घिसता है, सारी मशीन इकट्ठी घिसती है। तो संस्कार जब बिगड़ते हैं तो मन भी संकल्प उल्टे उठाता है, तो बुद्धि भी निर्णय गलत करती है, तो कर्म भी गलत होते हैं। इसी तरह तो कलयुग आ जाता है, नहीं तो गिरती कला कैसे आए, अगर बीच में ठीक होने का मार्जन हो तो नहीं आए। जैसे किसी व्यक्ति की 100 रुपया तनख्वाह है, उसका 100 रुपये का ही खर्चा हो तो महीने के एंड में 0 हो जाएगा, फिर 1 से शुरू करेगा। लेकिन अगर उसकी तनख्वाह 100 है, खर्चा 105 है, तो अगले महीने 5 का लोड चलेगा, फिर अगले महीने और 5 ऐड हो जाएंगे, तो लोड बढ़ता जाएगा, उधार बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार अगर हम सारे कल्प में देखें तो आप क्या देखेंगे कि हमारी गिरती कला का वजह यही है कि विकर्म बढ़ते जाते हैं, और उसका कारण यही है कि जितने खराब संस्कार थे उल्टे, उससे फिर संकल्प उल्टे पैदा हुए, फिर बुद्धि ने ठीक जजमेंट नहीं दी, फिर और कर्म हो गए उल्टे, फिर उसका और संस्कार बन गया, तो गहरे होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। जैसे आप कोई खड्डा खोदते हैं तो जितना उसको खोदोगे उतना गहरा ही होता जाएगा। इसी प्रकार से ये ऐसा सिस्टम है कुचक्र, लेकिन कुचक्र में भी गहरा होता जाता है और आत्माएं परेशान है, बुद्धि भी मिली हुई है, मन भी मिला हुआ है, वाचा भी मिली हुई है, बड़ी भक्ति भी करते हैं, बड़ी शिक्षाएं भी मिली हुई हैं, बुद्धि कहती भी है ये ठीक है ये गलत है, ऐसे करना चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए, ज्ञान भी है समझ भी है, फिर क्यों ऐसा उल्टा काम हो जाता है, ये तो प्रश्न है ना। अब हम लोगों को ही बाबा ने तो ज्ञान पहले दिन दे दिया कि बच्चे ये विकर्म है ये अच्छा कर्म है, फिर इतना टाइम पुरुषार्थ करके उस स्टेज को पाने में क्यों लगता है। अगर सिर्फ ज्ञान काफी होता तो, ज्ञान तो एक समझ है कि भाई ये ऐसा है ये ऐसा है, परंतु उस समझ को अपनी समझ से मिलाकर उस समझ से स्वरूप बनना, इसमें फिर ये तीनों चीजें, संस्कार भी, बुद्धि भी, मन भी, इनका परिवर्तन चाहिए। अंदर की मशीन का परिवर्तन होगा तो वाचा परिवर्तित होगी, कर्मना परिवर्तित होगी, रूप स्वरूप बनेगा, सारा कुछ बदलेगा। तो अंदर की मशीन को चेंज करते हैं ना हम लोग, तो इसलिए अब आप देखिए कि जैसी भी हमारी बुद्धि है वो किस तरह की है, जैसी हमारी आत्मा है। तो पहले तो हमें ये स्वीकार करना पड़े कि हम अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते, क्यों, ये बड़ा जरूरी है। जब तक हम अपनी बुद्धि को असली ढंग से नहीं देखेंगे कि भाई हमारी बुद्धि में कोई डिफेक्ट है, तब तक हमें उसको ठीक करने का भी ख्याल नहीं आएगा। हम तो उसी के ऊपर भरोसा करेंगे। आपका कोई वजीर हो राजा का, या किसी का कोई मुंशी हो या अकाउंटेंट हो, और वो धोखा देने वाला हो, ऊपर से नमस्ते सलाम करता रहे अंदर से धोखा देता रहे, तो बिजनेस में घाटा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अपनी बुद्धि को बहुत अपनी समझें और उसके ऊपर भरोसा करें, और हर काम करने से पहले उससे निर्णय ले कि महाराज ये करूं या ना करूं, वो कहे करो करो अच्छा, और फिर दुख उठावे तो जरूर धोखेबाज हो गया ना। इसलिए हमें पहले तो अपनी बुद्धि के लिए सर्टिफिकेट चाहिए कि क्या हमारी बुद्धि सालम है। अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं, क्योंकि ये बात सेवा में भी लागू होती है। मान लो एक भारतवासी व्यक्ति है, ब्राह्मण है, वो कभी मांस नहीं खाता, बल्कि मांस का नाम सुनकर उसको नफरत आती है, घृणा आती है, ये क्या होता है, और कहीं कोई मांसाहारी को देख ले तो राम राम करता हुआ वो निकल जाता है। ऐसे भारत में बहुत लोग हैं। तो उसकी बुद्धि क्या कहती है कि मांस खाना बहुत खराब चीज है, जहां तक उसको भूखे रह के प्राण भी त्यागने पड़े तो वो मांस नहीं खा सकता। ऐसे हैं अंग्रेज लोग, यही कहते हैं कि भारतवासी अजीब है, वो अपनी जान भी गवा देंगे मांस नहीं खाएंगे। उसमें भी तो बुद्धि है भारतवासी में। अब मान लो किसी कारण से वो व्यक्ति, आमतौर पे कन्याओं के साथ भी ऐसा होता है कि घर में मांस नहीं खाते, ससुराल चली जाती हैं, तो वहां ससुराल वाले में अंडे खिलाना पड़ता है, आमलेट बनाना पड़ता है, तो मजबूर होकर उनको आदत पड़ जाती है। भाइयों में भी होता है कि मान लो आप अपने घर में रहते हैं, वेजिटेरियन हैं, कहीं आपकी नौकरी लाके असम में लग गई किसी नई कंपनी में जहां खेत है, अभी प्रोजेक्ट बना है, अब वहां कोई होटल वोटल नहीं है, तो दुनिया के लोग तो वैष्णो होंगे तो वैष्णो होटल में खाना खाएंगे। वहां है ही एक होटल जहां पर वैष्णो भी मिलता है, दूसरा भी मिलता है, तो क्या करेगा बेचारा, जो तो ब्राह्मण है वो तो घर में बना लेगा। जो दुनिया वाले की एक एग्जाम्पल है वो क्या करेगा, अच्छा भाई कोने में बैठ जाओ, वेजिटेरियन खाना खा लो, है ना। ऐसे कहते हैं ना, एक प्रिंस था भारत का, वो लंदन में गया और लंदन में उसने जाके कहा कि मैं बड़ा वैष्णव हूं, होटल वाले को कहा मुझे हमेशा वैष्णव खाना दिया करो। एक दिन उसकी सब्जी में हड्डी आ गई, तो उसने कहा ये क्या, तो उसने मालिक को कहा, तो होटल के मालिक ने अपने नौकर को डांटा, देखो तुम्हें कहा था ना हड्डियां निकाल निकाल के रसा दिया करो, आज तुमने ऐसे दे दिया, तो अब आप देखो। इसी प्रकार से अब वो बेचारा व्यक्ति जो है, आखिर कहां तक वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होगा, कोने में बैठ जाएगा आके खाना खा लेगा सब्जी से। अब उसके मान लो दफ्तर के दोस्त भी वहां खाना खाते हैं, साथ काम करने वाले, और उनसे धीरे धीरे उनकी मित्रता बढ़ जाती है। एक दिन उसका दफ्तर का दोस्त, वो तो मांस खाने वाला है, वो आके कहता अच्छा भाई मेरे साथ ही बैठो, कुछ बातचीत करेंगे, तो धीरे धीरे उसकी नफरत घटनी शुरू हो जाएगी और वो कहेगा ठीक है ये मांस खाता है, मैं अपना वेजिटेरियन खा लेता हूँ, साथ बैठ के खाना शुरू कर देगा। अब ऐसे करते करते मान लो किसी दिन वो बीमार हो जाए और उसको उसका वही दोस्त कहे अरे भाई इसकी तरी जो होती ना रसा, ये बड़ी ताकत वाला होता है, ये खाओ आज तुम बीमार हो। अब वो पहले दिन मान लो खाने की कोशिश करेगा तो उसका उल्टा ऊपर को आएगा मन, जैसे उल्टी आती है, लेकिन दोस्ती में स्नेह में मान लो धीरे धीरे वो मांस खाने के रसा खाना शुरू कर देता है। बहुत सारे ऐसे मांस खाने वाले हैं, अगर आप उसको चाकू दें कि ये लो चाकू, तुम तो मांस खाते हो, ये लो जानवर, इसको काटो और इसका मांस खाओ, तो आधे तो जवाब दे देंगे, कहेंगे जी हम कटा हुआ मांस नहीं खा सकते, कटा कटाया खा लेते हैं, खुद नहीं मार सकते। हमारे एक मौसा जी थे, वो मांस खाते थे। एक दिन किसी ने कहा कि ये मुर्गा ले जाओ और घर में काट के खाना। उन्होंने मुर्गे को काटने की कोशिश की, आधी गर्दन उसकी कटी, वो उछल करके छत से जा लगा तड़प कर। मौसा जी को इतनी घबराहट हुई तो उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया, तो क्योंकि वो तो देखते है ना, जबकि फिर उनका छोटा एक बच्चा था वो मर गया, तो उनको और भय हो गया कि मुझे पाप लगा है। तो वो लोग तो भक्ति मार्ग में ऐसे करते हैं, परंतु हम आपको ये बता रहे हैं कि बुद्धि कैसे गिरती है। वही बुद्धि जो कहती थी कि मांस खाना बुरा है तो बुद्धि वही, अब सरकमस्टांस बदलने से वो बुद्धि कहती है मांस खाना तो अच्छा है, परंतु आप काट के नहीं खा सकते, वो उसमें भय है। वही बुद्धि एक कसाई की होती है जो कि हर वक्त गाजर की तरह जानवर काटता रहता है। अब उसकी आदत पड़ जाती, पहले पहले तो वो भी सतोगुणी था, लेकिन धीरे धीरे उसको बुद्धि जवाब दे देती है उस हद तक कि मांस चलो जानवर काटना कोई बुरी बात नहीं है। अब देखिए कि मान लो एक कसाई बकरे काट रहा है और उसके आगे आप एक इंसान का बच्चा ला के रख दें, इसको भी काट, तो उसका छुरा रुक जाएगा, है तो वो कसाई, जान बकरे में भी है, परंतु वो कहेगा नहीं नहीं ये इंसान का बच्चा मैं नहीं काट सकता हूं, मैं तो बकरा काटता हूं ना। अच्छा, और आप डाकू को देखिए, वो जाता है उसके हाथ में बंदूक होती है, धड़ाधड़ इंसान जो भी दिखे उसके रास्ते में उसको मार देता है, उसके लिए इंसान भी जो है वही है जैसे कसाई के लिए बकरा है। फिर भी डाकू के आगे आप उसका अपना भतीजा या अपना बेटा ले आए कि भाई इसको भी मार दो, तो क्या करेगा, कहेगा अरे भाई वो देखना भीड़ में मेरा बेटा खड़ा है उसको मत मारना, अपने साथियों को भी कहेगा और बाकियों को मार देगा। और कई ऐसे भी होते हैं जो अपने बेटे को या अपने बाप को भी मार देते हैं। अब कहने का भाव क्या हुआ कि बुद्धि सब में है, परंतु बुद्धि की लेवल में फर्क आ गया, बुद्धि की पवित्रता में फर्क आ गया। इसी वजह से हर व्यक्ति बुद्धि रखते हुए वो समझता है कि मैं ये काम ठीक कर रहा हूं, लेकिन दर्जा ब दर्जा जिसकी बुद्धि बहुत प्योर है वो देख सकता है कि दूसरा गलत काम कर रहा है, जिसकी इम्प्योर हो गई वो तो नहीं उसको पता लगता। अब जैसे हम लोग प्याज खाते थे, लहसुन खाते थे, उस समय हमें बड़ा अच्छा लगता था, अभी हमें दूर से कहीं प्याज की स्मेल आ जाए तो हमें लगता है ये पता नहीं क्या है, इतनी खराब स्मेल आ रही है। अब क्योंकि छोड़ दिया इसलिए मालूम पड़ा। इसी प्रकार से जो व्यक्ति काले रंग में रंगा हुआ है उसको कहो सफेद रंग क्या होता है, उसको मालूम ही नहीं। इस वास्ते इसीलिए ब्राह्मणों को छोटी सी बात भी जो है वो ब्राह्मणों की, जैसे सफेद ड्रेस है तो दाग दिखाई देता है, ऐसे ही कोई उल्टा कर्म होगा तो दिखाई देगा। और बाबा के ज्ञान में तो इतनी शक्ति है कि ब्राह्मण को दूसरा भी रोक देगा। अब पान लोग सारे खाते हैं, लेकिन कोई ब्रह्मा कुमार पान की दुकान पे खड़ा होगा तो लोग कहेंगे हैं आप पान की दुकान पे खड़े हैं, लोग कहेंगे। अगर ब्रह्मा कुमार सिनेमा का टिकट खरीद रहा होगा तो लोग कहेंगे आप सिनेमा देख रहे हैं। यानी इतनी शक्ति इस ज्ञान में है कि दुनिया भी आपको रोकेगी। अगर छोटा बच्चा माता पिता गुस्सा करेंगे तो छोटा बच्चा कहेगा आप तो आत्मा है ना, आप क्यों लड़ रहे हैं, तो समझो कि हमारे एजेंट सब जगह है। ये ज्ञान की शक्ति है और किसी को नहीं रोकेगा। साधु लोग सिगरेट पीते रहते हैं आपने देखा होगा, तम्बाकू खाते हैं, उसको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन बाबा के बच्चों को ये शक्ति है ईश्वरी ज्ञान की, हमें इसका फखर होना चाहिए कि हमारे को साथ की दुनिया भी हमें पावर देती है कि आपका क्या स्वरूप है, अगर भूलने की कोशिश भी करो तो वो याद करवा देंगे कि आपका ये स्वरूप है। इसलिए अब आप देखिए कि बुद्धि के अंदर क्यों ऐसा होता है, इसका कारण ये है, बुद्धि सबकी आंसर करती है, उत्तर देती है, जिसको हम कहते हैं अंतरात्मा की आवाज आती है। परंतु जिस हद तक हम, ये नोट करने की बात है, जिस हद तक हम अपनी बुद्धि को ऑलरेडी दबा चुके हैं, जिस हद तक हम अपनी बुद्धि का कहना मानने से इनकार कर चुके हैं, उस हद तक हमारी बुद्धि हमारे को दोबारा चेक नहीं करेगी, उसके आगे करेंगे, आगे गिरेंगे तो चेक करेगी। ये बुद्धि का ला है। यानी मिसाल के तौर पे पहली बार जब कोई सिगरेट पीता है तो उसकी बुद्धि उसको रोकती है कि भाई ये सिगरेट पीना खराब चीज है, वो अपना सिगरेट पी भी लेगा तो चोरी से पिएगा, बाप से डरेगा, फिर कुल्ला करेगा, लैची खाएगा, घर जाएगा, कभी कोई स्मेल ना आ जाए किसी को। अच्छा, परंतु एक बारी जोर से रोकती है, दो चार दस बारी बीस बारी सिगरेट पीने का आदि हो जाए तो उसको निर्भयता आ जाएगी, फिर वो कहेगा हाँ जी पिताजी मेरे को एक बारी मार लेंगे ना, चलो मैं पीता हूँ। फिर उसके बाद वो सिगरेट के हक में भी रीजन देना शुरू कर देगा कि ये बड़ी अच्छी चीज है, इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है आदि आदि, लैटरिन अच्छी आती है, ऐसे ऐसे भी है, अच्छा कब्ज दूर हो जाता है। अब आप सोचिए उस व्यक्ति का बुद्धि बिगड़ी ना, अब बिगड़ने से उसको ऐसे ऐसे उसके प्लस पॉइंट बताने शुरू कर देगा। परंतु अगर आप गौर से देखें तो पहली बार बुद्धि ने उसको रोका, दूसरी बार रोका, तीसरी बार, धीरे 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 बुद्धि रोकना बंद कर देती है। अब मान लो कोई चोर है, कोई व्यक्ति बिल्कुल चोर नहीं है, अब उसको कहें कि भाई ये ट्रांजिस्टर पड़ा है यहाँ, इसको चोरी कर लो, भाई साहब तो गए हैं उधर, तो आप कहेंगे नहीं किसी का ट्रांजिस्टर है, मैं क्यों चोरी करूं। अब कोई चोर है, बन गया चोर धीरे धीरे, अब वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि ट्रांजिस्टर चोरी कर लो, उसकी बुद्धि ये नहीं कहेगी चोरी ना करो, उसकी बुद्धि कहेगी कैसे चोरी करो, वही बुद्धि जो जिसका काम है रोकना वो गवाह बन जाएगी। अब चोर की बुद्धि क्या कहती है कि देखो रात को जाना, धीरे धीरे जाना, दबे पांव जाना, सांस रोक के जाना, जा अंधेरे में जाना, आवाज नहीं करना, खांसना नहीं, ये सब कौन कर रहा है, चोरी के लिए बुद्धि उसको हेल्प कर रही है ना, ऐसा करोगे तो पकड़े जाओगे। तो ये बुद्धि जिसका काम रोकना था वो चोरी करने का काम उसको मदद कर रही है। इसलिए बुद्धि जब जवाब दे जाती है, जब आप बुद्धि को दबा देते हैं, दो चार बार दस बार कोई दबा देता है, उसके बाद वो बुद्धि उस काम से बंद कर देती है, बल्कि उसकी गुलाम बन के उसकी सेवा लग जाती है, माया की सेवा करने लग जाती है। फिर भी अब मान लो कोई व्यक्ति चोर बन गया, कभी उसने खून नहीं किया, पहली बार रात को एक दिन वो पकड़ा जाता है तो क्या करेगा, वो कैद हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, जेल में चला जाएगा, खून नहीं करेगा। क्यों? कि उसकी बुद्धि कहेगी खून करना तो बहुत बुरी बात है, चोर तो चलो चीज चुराई ना, खून क्यों करूं मैं। परंतु किसी वक्त ऐसे मौके में एक बारी वो खून कर दे तो पहली बार उसकी बुद्धि कहेगी खून देखेगा कि ये व्यक्ति मर गया, बड़ा दुख होगा उसको। लेकिन दो चार दस बारी करके खूनी बन जाएगा तो फिर उसकी बुद्धि खून करने से भी नहीं रोकेगी। तो आप ये अनुभव करेंगे कि जिस हद तक किसी भी आत्मा की बुद्धि गिर चुकी है, उस हद तक वो बुद्धि उसको मदद नहीं करती, उल्टी मदद करती है। परंतु उसके आगे जब वो गिरता है तो उसकी अंतरात्मा की आवाज आती है कि ये ना कर। परंतु क्योंकि वो एक तरफ उल्टे तरफ लग जाता है तो धीरे धीरे वो हर उल्टा काम आगे आगे बढ़ के करता ही जाता है। छोटा चोर बड़ा चोर बन जाएगा, बड़ा चोर डाकू बन जाएगा, डाकू बड़ा डाकू बन जाएगा। अब पहले किसी को मारना बुरा गिनते थे, एक व्यक्ति मर जाए तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। अब धीरे धीरे तीर बन गए, फिर बंदूक बन गए, फिर स्टेन गन बन गए, आजकल ऐसे एटम बम बन गए हैं जो सबका सत्यानाश कर देते हैं। तो धीरे धीरे मनुष्य उसको टॉलरेट करने लग गए। पहले एक बार एटम बम का सुनते थे तो कान खड़े हो जाते थे, हैं? अब सुनते हैं और बड़ा बन गया तो सुन के थोड़ा सा सुन लेते हैं, बस चुप रहते हैं। कारण क्या है कि धीरे धीरे बुद्धि तमो से तमो प्रधान बनती जा रही है। इस वास्ते ये सारी एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहे हैं कि आपको ये स्पष्ट रहे कि हमें अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं कर सकते। इसी बुद्धि ने हमें यहां लाया है। सतयुग की परसों मुरली आई थी तो बाबा को वंडर लगता है कि मैंने आपको इतनी बादशाही दी, इतनी राजाई दी, इतना हीरे ज्वारा दिए, जन्म जन्मांतर के लिए वर्षा दिया, इतनी अच्छी दुनिया दी और आपने ये हाल कर लिया, एकदम कंगाल मोहताज, कहां गई। तो बाबा को वंडर लगता है। तो बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हें सालम बुद्धि दी। सबसे पहले क्या दिया कि किसी मूर्ख को आप जायदाद भी दे दो तो वो तो घुमा देगा एक दिन में, परंतु बुद्धि दी साथ साथ इस जायदाद को कैसे संभालना। राजा भी अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजता है। क्यों भेजता है? कि मेरा बच्चा लायक बने, जो बादशाही उसको दूं उसको बढ़ाए, ना कि उसको खत्म कर दे। इसी प्रकार से बाबा भी हमको ज्यादा टाइम किसमें लगाते हैं, बच्चे तो हम एक दिन में बन गए, एक सेकंड में बन गए, लायक बनाने के लिए। तो लियाकत किस चीज की है? बुद्धि की। भक्ति में भी आप क्या मांगते हैं? हमेशा हे भगवान द्वापर से मांगते हैं, हमें सुबुद्धि दो, हमारी अकल दो, हमें हमारी बुद्धि जो बिगड़ गई है उसको अच्छी करो, हमारी निर्णय शक्ति बढ़ाओ, है ना। तो ये जो बुद्धि है ये मेन चीज है, क्योंकि इससे ही हम आगे पास ऑन करते हैं, इस चीज को स्वीकार करना है या नहीं करना है पास ऑन करते हैं। अब आप देखिए कि हमें बाबा क्या, कौन सी क्या देते हैं? श्रीमत देते हैं। मत मैंने क्या होता है? समझ या बुद्धि। और बाबा कहते हैं कि मन मत पर नहीं चलो, पर मत पर नहीं चलो, शास्त्र मत पर नहीं चलो, गुरु मत पर नहीं चलो, किस पर चलो? श्री मत पर। तो हमारा कल्याण किससे होना है? अगर हमारे संस्कार बदलने हैं, अगर हमारे मन को बदलना है, अगर हमारा योग लगना है, अगर हमारी धारणा होनी है, अगर हमारा तन मन धन सफल होना है, अगर हमारी सेवा होनी है, अगर त्याग करना है, तपस्या कुछ भी करना है, तो उसका आधार तो श्रीमत ही है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाबा हमें इतनी अच्छी श्रीमत देते हैं, उससे बड़ी मत तो कोई है ही नहीं, और वो कल्याण वाली मत है, हमारे ही फायदे की है, बाबा का तो उसमें कोई खास फायदा नहीं, हमारा ही फायदा है। लेकिन अब आप देखिए, बाबा कहता है एक नहीं लेगा, दूसरा लेगा, जिसको लेना उसको लेगा ही लेगा, तो बाबा तो न्यारा हो जाता है देखकर। अब हम देखें कि जब हमारे फायदे की चीज हमें मिल रही है, तो उस चीज को हमारे घर में जाने के से, हमारे पर्स में जाने से, हमारे स्टॉक में जाने से कौन रोकता है? तो जैसे हमारे अपने संकल्पों को काम में आने या ना आने का निर्णय बुद्धि करती है, इसी प्रकार से बाबा की दी हुई श्रीमत या हमारे बड़ों की दी हुई मत, दादियों की दी हुई मत, जो भी हमको शुभ राय देते हैं, अब उसको धारणा होने में कौन रास्ते में रोकता है? आप सोचिए, ये तो सीधी अंदर जानी चाहिए ना, बाबा ने दी हमने धारण की, उसको कौन रोकता है? बुद्धि रोकती है। क्या कहती सुनी को? हाँ जी ठीक है। तो अब आप देखिए कि इस समय जो हमारे पास बुद्धि है, वो हमारे को यानी बुद्धि यहां बैठी है हमारे अंदर, और बाबा कहता है बच्चे ये करो, उसको करना है या नहीं करना है, अभी करना है या कल करना है, ढीले से सोचना है करूं या ताकत से सोचना है करूं, ये कौन निर्णय कर रहा है? हमारी बुद्धि। तो भगवान की मत को भी हमारी बुद्धि बैठ के जजमेंट दे रही है कि भगवान की मत को लेना है या नहीं लेना है, या कम लेना है या ज्यादा लेना है, आज लेना है या कल लेना है। तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। क्यों? कि हम इसी बुद्धि, यही बुद्धि हमें सतयुग से धीरे 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 यहां ले आई। अगर आज हम दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, किसी आदत से तंग हैं, तो कौन करवा रहा है? बुद्धि। अच्छा, और ये बुद्धि ही जिसको कहा जाता है तमो प्रधान हो गई है, ये तो मानने की बात है, आत्मा तमो प्रधान तो बुद्धि भी तमो प्रधान। अब यही बुद्धि बैठकर रास्ते में रुकावट डाले, हैं? जैसे वो कहते किसी के हार्ट के अंदर चर्बी जम जाए तो उसमें खून नहीं जा सकता साफ होने के लिए, तो रस्ते में बैठ करके हमारी हार्ट की नाड़ियों को इतना छोटा कर दे जो कि हमें उसको मुश्किल से पंप करके भेजना पड़े, तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जो बाबा कहते हैं कि माया जो है बहुत मीठे मीठे रूप से आती है, बहुत सूक्ष्म रूप से आती है, और जैसे चूहा होता है फूंक मार के काटता है, इसी प्रकार से ईश्वरी रूप से आती है। इसी प्रकार से माया के आने का एक रूप ये है कि व्यक्ति अपने को सेफ समझता रहे लेकिन वो सेफ ना हो, ठीक है ना। हम समझे कि हमने अपने सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करे हुए हैं और चोर अंदर नहीं आ सकता, और चोर हमारे ट्रंक के अंदर छुप के बैठा हुआ हो तो क्या होगा, है? इसी प्रकार से ये बुद्धि हमारे अंदर की चीज है, हम माया को बाहर ढूंढ रहे हैं कि भी माया कहीं इधर उधर दिखेगी तो हम संभाल लेंगे, और माया तो अंदर ही बैठी है, मशीन खोलकर वो बुद्धि के रूप में बैठी है, और क्या करती है कि कोई भी अच्छी बात बाबा ने बताई तो वो उसको ही ट्रांसफर करके और रूप में बता देती है। जैसे कि ट्रांसलेट करने वाले होते हैं ना, तो इंग्लिश में कुछ बोलो हिंदी में कुछ और बता देते हैं कि भाई ये हुआ, तो बुद्धि उसमें ट्रांसलेट करते करते बीच में गड़बड़ कर देती है, या किसी को कहो ये मैसेज देना जाके वहां दिल्ली में, वो उसको बदल के दूसरा दे दे कि नहीं उसने ये कहा है, है ना, तो फिर क्या होगा। अब किसी ने कहा मेरा चाचा अजमेर गया है, तो उसने लिख दिया टेलीग्राम में मेरा चाचा आज मर गया है, हा?
तो वो बेचारा क्या होगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसी तरह से जरा सा आ का ई करने से काम गड़बड़ हो जाता है, जो बुद्धि की इच्छा है तब करके। कहा जाता है, एक कहानी है कि तीन देवियां खड़ी थी, एक तो थी बुद्धि और एक थी लक्ष्मी और एक थी भावी। तो एक बगीचे में खड़ी थी सुबह के वक्त, तो नारद जी वहां से गुजरे, तो नारद जी ने कहीं ऐसे ऐसे करके किया, तो उन्होंने समझा नारद जी ने हमें सलाम किया है। तो आपस में कहने लगी कि एक ने कहा मुझे सलाम किया, दूसरे ने कहा मुझे नमस्कार किया, तीसरी ने कहा मुझे किया है। तो तीनों आपस में सोच में पड़ गई, वो समझती थी हम एक से एक बड़ी हैं। बुद्धि कहे मैं बड़ी हूँ, लक्ष्मी यानी धन कहे मैं बड़ी हूँ, भाभी कहे मैं बड़ी हूँ। आखिर उन्होंने कहा चलो नारद जी से पूछो। तो गई, कहा मुनिवर नमस्कार, अभी अभी आपने जो नमस्कार किया था वो किसको किया था? तो पहले पहले लक्ष्मी आई कि मुझे किया था ना, वो समझती थी मैं जिसके पास धन है, जैसे अभी वो नेताजी कह रहे थे धन धन धन, तो वो धन है। अब आप देखिए कि नारद ने सलाम तो नहीं किया था, पर उसने कहा ये पूछ रही है तो चलो। उसने कहा जी मैं आपको क्यों नमस्कार करूंगा, धन तो आप तो जिसके पास आती हो वो भी पागल हो जाता है और जिससे जाती हो वो भी पागल हो जाता है, जिसके पास धन आ जाए उसका भी दिमाग खराब हो जाता है, जिसके चला जाए वो भी अशांत हो जाता है। फिर बुद्धि आई, बुद्धि ने कहा भाई अब तो मेरा ही नंबर ज्यादा चांस हो गया। उसने कहा भाई मेरे को किया है? उसने कहा मैं आपको भी क्यों करूंगा, आप तो तब आती हो जब बात बिगड़ जाती उसके बाद आती हो, आमतौर पे अकल बाद में आती है, कि ऐसा नहीं होता तो अच्छा था, है ना। उसने कहा आपको भी नहीं किया। फिर भाभी ने कहा मेरे को किया, जिसको कहते ड्रामा है। उसने कहा हाँ आपको किया है, आपको तो आगे से भी सलाम पीछे से भी सलाम, खाली हुई उसमें आगे आके। अब आप देखिए कि बाबा जो ज्ञान रत्न देते हैं या जो श्रीमत देते हैं वो कहाँ धारण होती है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है। संस्कार हमारे जो हैं वो तो हैं, संस्कारों को भस्म करने का तरीका दूसरा है। वो क्या है? योग अग्नि, जिसके लिए आप भट्टी पे आए हैं, कि पुराने तमोगुणी संस्कारों को भस्म करने के लिए, पिछले बोझ के संस्कारों को, खराब संस्कारों को, वो है योग, वो ठीक है। और अच्छे संस्कारों को भरने के लिए जो आप सेवा करेंगे या जो आप कमाई करेंगे धन से मन से तन के, वो भरेगा, वो दूसरा सिस्टम है। लेकिन बात हो रही है कि बुद्धि की, तो बुद्धि में क्या भरता है? बुद्धि में, बुद्धि को बाबा कहते हैं तिजोरी है, ठीक है ना। तो अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी में बाबा के अमूल्य ज्ञान रतन, एक एक रतन जिसकी वैल्यू कितनी है, है ही अमूल्य। आज के जमाने में तो उसका मूल्य है ही नहीं, परंतु एक रतन जो बुद्धि में भरता है वो हमें इस कलयुगी द्वापर युगी सब दुनिया से ऊपर ले जाता है। एक एक रतन भरा कि हमने बाबा को जान लिया, ठीक है ना, ये बुद्धि में आया ना, कि बुद्धि ने बाबा को पहचान लिया। बुद्धि तो परख शक्ति है ना, बुद्धि ने पहचान लिया। इसी क्या क्या मतलब हुआ कि माया की धुंध हट गई। जैसे धुंध होती है उसमें कुछ नहीं दिखता, दूर से देखो तो कोई दिखता कोई आकार आ रहा है, और समीप आए तो लगता कोई मनुष्य आत्मा है, व्यक्ति है, ये नहीं पता लगता पुरुष है स्त्री है बच्चा है कौन है, और नजदीक आए तो लगता है। तो बुद्धि ने ये सबसे बड़ी परख, एक रतन जो सबके पास धारण हुआ वो क्या है, कहते ना सखीरी मैंने पाए तीन रतन, तो पहला रतन कौन सा पाया, बाबा। तो ये हमारा, इस रतन ने हमको कोटों में कोई बना दिया, ये तो फैक्ट है, हम बाबा के बन गए, तो ये भी बड़ी वैल्यूएबल चीज मिली। लेकिन तीन रतन थोड़ी पाने हैं हमें, तो अनेका अनेक अनगिनत रतन जो के चमकते रहे, क्योंकि हमारा जो रतन जड़ी ताज होता है उसमें कितनी मनियां चमकती है, महलों में कितने रतन चमकते हैं, वहां तो मखमल के जूतों में भी रतन चमकते हैं। अब आप सोचिए इतने रतन हमने इकट्ठे करने हैं जो स्थूल में वहां मिलेंगे, यहाँ ज्ञान के रूप में, तो ये कहाँ धारण होंगे, बुद्धि रूपी तिजोरी में। अब बुद्धि रूपी तिजोरी में अभी क्या रखा हुआ है, अभी हमारी बुद्धि रूपी तिजोरी में क्या है, आसुरी चीजें रखी हुई हैं, है ना। जैसे दो नंबर का पैसा होता है ना लोगों की तिजोरियों में, व्यापारियों की, तो होगा होगा बहुत, लेकिन उसका भय लगा रहेगा कि अभी इनकम टैक्स वाला आ जाएगा, अभी कोई इंस्पेक्टर आ जाएगा, अभी मेरे बेटे ले जाएंगे मुनीम जी को। रूपी तिजोरी में इस समय क्या है, अहंकार, वाह मैं कौन, मेरे जो है कुछ भी नहीं हम, लेकिन अहंकार कितना कि देखा जाए बहुत अहंकार है। साधारण आत्मा, वो भी कलयुग के आत्मा, बाबा ने हमको चुना, इस कीड़े को मैं भूं भूं करके इसको उड़ाऊं, परंतु अहंकार कितना, कभी कभी ऐसी एक्शन कोई कर देते हैं जो कि अज्ञानियों जैसी, अज्ञानियों में अहंकार होता है ना। कहते हैं एक सेठ था, उसको बहुत अहंकार हो गया कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत बिल्डिंग है, बहुत मिल है। उसने एक साधु को बुलाया खाना खाने के लिए, तो साधु को भोजन करा के कहता चलिए महाराज ये देखिए, ये मेरी मिल है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा स्विमिंग पूल है, ये मेरा ड्राइंग रूम है। तो साधु समझ गया इसको अहंकार है। वो कमरे में आया तो वहां एक दुनिया का गोला पड़ा था, ग्लोब। तो बॉम्बे का रहने वाला सेठ था, तो साधु ने कहा इस ग्लोब ये क्या है, उसने कहा ये दुनिया का गोला है। कहता इसमें भारत कहाँ है, उसने दिखाया इतना सा भारत था। उसने कहा इसमें बॉम्बे कहाँ है, तो कहता ये बिंदी ये बॉम्बे है। कहते इसमें तेरा घर कहाँ है, तो दिखाई नहीं। तो फिर उसने कहा इसमें तेरी वो फैक्ट्री कहाँ है। तो इसलिए वो समझ गया सेठ के भी मैं खाम खाम में अभिमान कर रहा हूं। इसी प्रकार से अगर आप देखें अभिमान भी, अभिमान होता है उल्टी चीज का है, उल्टा, क्योंकि ये एक विकार है। तो किसी को अहंकार है ना, तो धन का अहंकार हो जाएगा, बुद्धि का अहंकार हो जाएगा, या समझो अपने मित्र संबंधियों का अहंकार हो जाएगा, अपने शरीर के बल का अहंकार हो जाएगा, कोई विशेषता होगी उसका अहंकार हो जाएगा कि मैं पेंटर हूं, जब तक मैं पेंट नहीं करूंगा इनका पर्दा ही नहीं लगेगा, तो अहंकार हो जाएगा, नखरे करेगा, नाजक हो जाएगा, मिन्नत करवाएगा। तो ये अहंकार जो है ये बुद्धि में पड़ा है। अच्छा, इसी तरह से लोभ पड़ा है। अब लोभ के लिए ऊपर सुबह भी मुरली चली है। तो लोभ जो होता है कई तरह का होता है, मान का लोभ, शान का लोभ, अपनी इज्जत कराने का लोभ, तो कई तरह की उसकी वैरायटी है। अच्छा, तो ये सारे विकार बुद्धि के अंदर पड़े हैं, इसको कहा जाता है आसुरी बुद्धि। क्यों कि ये हमें तंग ही करेंगे, इन्हीं विकारों से तो हम दुखी हुए हैं। अब जो बुद्धि में ये पड़े हैं, तो कोई संकल्प आया नीचे से मान लो, तो उसको बुद्धि ने क्या देखना है कि मेरा अहंकार इसमें सिद्ध होता है। मेरे को मान शान से यहाँ बुला के कहते यहाँ बैठो अपना परिचय दो तब तो मैं जाऊं, नहीं तो ऐसे ही कहेंगे अपना परिचय कागज पे लिख के दे दो, तो दिया ना दिया एक ही बात है, मेरी शक्ल तो किसी ने देखी नहीं। तो अगर अपने अहंकार की सिद्धि के लिए वो संकल्प है, चाहे सेवा का ही है, चाहे संसारिक है, चाहे लौकिक का है, तो वो उसको पास करेगी, नहीं तो दबा देगी। इसी प्रकार से बड़े अच्छे अच्छे संकल्प आएंगे, लेकिन जब ये पांच चीजें तिजोरी में हैं, तो वो उसकी सिद्धि के अनुसार ही उसको करेगा। तो किसी को काम वृत्ति है तो उसकी सिद्धि हो कहीं तो उसमें काम लगेगा, किसी में क्रोध वृत्ति है, मेरा सब कहना माने, सब मेरा दबाव में रहें, मैं मेरा हुक्म माने, तो वो उसमें करेगा, वो सेवा करेगा, सेवा भी उसमें करेगा। अच्छा, इसी तरह लोभ वृत्ति है, कुछ इसमें मेरा फायदा हो जाएगा, चलो किराया बच जाएगा, ये किराया दे दे तो मैं ये सेवा कर आऊं, वगैरह वगैरह मोह है, ऐसे है। तो कहने का भाव ये है कि अगर किसी भी तमोगुणी विकारी वृत्ति के वश हमने कोई सेवा भी की, हमने मान लो कुछ किया भी, तो वह हमारे को फल देने वाला नहीं है। उस पेड़ के क्या होगा, उसकी टहनियां निकलेंगी, क्योंकि कर्म का फल हर एक को मिलता है। तो कर्म बोए करोगे तो पौधा निकल आएगा, बड़े बड़े पत्ते निकलेंगे, बड़ी बड़ी टहनियां निकलेंगी, उसको देख के खुश भी होंगे कि वाह इतना बड़े बड़े लोगों को ज्ञान देंगे, वो सुन भी लेंगे, वो स्टूडेंट भी बन जाएंगे, कहेंगे देखो ना मैंने ये सेंटर चलाया, ये सब मेरे स्टूडेंट हैं। लेकिन उसमें जितना बढ़ाते जाओगे आखिर उसका फल नहीं निकलेगा, जो फल क्या है, संतुष्टता। तो कभी भी आप देखोगे, आप कभी भी कोई सेवा किसी भी इन चीजों के वश करोगे, नाम के, मान के, शान के, हद के, मेरे के, इसके, तो क्या होगा, फल पेड़ बहुत बड़ा निकलेगा। एक तो तूफान लगने से उसकी टहनियां टूटती रहेंगी, और दूसरे उसमें कभी भी फल नहीं लगेगा संतुष्टता का। तो संतोष ही नहीं पाया, संतोष रूपी धन नहीं पाया, तो वहां जाके भी हमें वो धन मिलने वाला नहीं, यहीं पर ही टहनियां हरी देखकर खुश हो जाओ। इस वास्ते ये भी धोखा है, और ये भी हमें बुद्धि धोखा देती है। तो तुम सेवाधारी तो हो ना, ये देखो ना तुम्हारा, तुमने भाषण किया, कितने लोगों ने सुना, कितना वाह वाह किया, बस वाह वाह के लिए भाषण किया, और वाह वाह हुई और भाषण की खुशी हो गई। अगर किसी ने कह दिया कि तुमने फालतू में इतना लंबा किया, इतना डिटेल क्यों सुनाया, ये क्यों किया, उदास हो जाएंगे कि वाह देखो इतना अच्छा मैंने भाषण किया, ये ऐसे कह रहे। या फिर जिसने वाह वाह की उससे दोबारा कहेंगे जाके, मैंने इतना अच्छा तो नहीं किया, वो फिर कहे नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा किया। तो तब उसकी दो चार यहीं पर उसकी प्राप्ति हो जाएगी, आगे नहीं जाएगा, इस वास्ते संतोष नहीं रहेगा। जो गर्म गर्मी में नहाए उसी वक्त सूख जाता है उसका, तो वैसे का वैसे ही। तो क्या होता है ऐसी आत्मा का, जब सेवा करेगा टेम्परेरी खुशी होगी, उसके बाद फिर गायब। धन से सहयोग देगा टेम्परेरी खुशी होगी, उसके बाद फिर गायब, सदा की तो वो नहीं रहेगी। इस वास्ते बुद्धि को, पहली बात अपनी बुद्धि को सरेंडर करें। बाबा क्यों कहते हैं बुद्धि का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। अर्जुन में जब तक बुद्धि का त्याग नहीं किया, भगवान आप ऐसा क्यों कहते हैं, वैसा क्यों कहते हैं, ये क्यों है, वो क्यों है, कितने प्रश्न करता रहा। आखिर उसने जब देखा कि मैंने आपको भगवान माना, मैं आपको अपना सखा समझता था, और अपनी बुद्धि का सरेंडर किया, अब मैं आपके कहने पे चलूंगा, लड़ने को तैयार हूं, तब जाके उसने जीत पहनी। फिर वो नष्टो महा हुआ, उसको स्मृति आई। इसी प्रकार से हमारा ही यादगार है। तो हमें अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा नहीं करना। जब हमने बुद्धि का त्याग करेंगे तो हमारा असली देहभान का त्याग होगा, नहीं तो दूसरे रूप को ले लेगा देहभान, सेवा के रूप में आ जाएगा, संबंध संपर्क के रूप में आके गड़बड़ करेगा। संबंध संपर्क भी क्यों बिगड़ता है, मेरी बुद्धि ज्यादा है, मैं जो कह रहा हूं वो राइट है, ये दूसरा रॉन्ग है। अच्छा राइट और रॉन्ग भी हुआ, बड़े के पास ले गए, उसने उसको बताया कि मैं राइट हूं ये रॉन्ग है, सचमुच ही मैं राइट हूं, चलो ठीक है, अब मैं कहूं कि ये रॉन्ग है इसको सजा दो। जब तक तुम इसको सजा नहीं देते, तुमने न्याय नहीं किया, वो भी मैं करूं, बड़ों को कहूं तुम दो, अब उनको सजा देनी है नहीं देनी है, प्यार से समझाना है, उसको वार्निंग देनी है, उसको कैसा है वो तो वो जाने, लेकिन जो बुद्धि का अभिमानी होगा वो फिर अपने तरह से न्याय भी मांगेगा कि मेरा कहना ही माना जाए। दो व्यक्तियों में बात हुई, कोई सेवा का ही प्लान बना, मेरी मानो तो ये सहयोग है, नहीं मानो तो मैं चला। इसलिए अब आप देखिए सारा उल्टा काम बुद्धि कराती है। तब करके पहली बात यह है, अगर हमने सचमुच बाकी चीजों का त्याग करना है और परमानेंट करना है और अपने भाग्य बनाने के लिए करना है, कहते हैं त्याग से भाग्य है, लेकिन परमानेंट त्याग से परमानेंट भाग्य है, यही कच्चा फल नहीं खाना है। तो पहली बात तो ये नोट करो, हम यहां आए हैं अपनी पुरानी बुद्धि को बदल के नई बुद्धि लेने के लिए, ठीक है ना। अलादीन के लिए भी दिखाते हैं, अलादीन पुराना चिराग ले लेता था, नया चिराग दे देता था। इसी तरह से पुरानी आत्मा अल्लाह अव्वल दीन, उसको अलादीन कहा जाता है कि भगवान जो पहला धर्म स्थापित करता है, वो ऐसे जादू के चिराग देता था जिसको रगड़ो जो चीज मांगो वो मिलेगी, ऐसी कहानियां है ना। तो ये हमें सब प्रकृति दासी तब होगी, सर्व प्राप्ति तब होगी, पहले हम अपने पुराने चिराग को सरेंडर करने को तैयार हों, क्योंकि उसी तजोरी में नया चिराग भरना है। तो इसलिए ये जो हमारे अंदर आते हैं, ये जो पांच विकार हैं, संस्कारों में तो हैं, लेकिन संस्कारों के बाद संकल्प के द्वारा जब बुद्धि में आते हैं, अगर बुद्धि में ये चीजें भरी हुई हैं, अहंकार है, लोभ है, क्रोध है, काम है, मोह है, या इसके भाई बहन है, आलस है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो वो बुद्धि उन संकल्पों को भी, शुद्ध संकल्पों को भी तभी आगे जाने देगी अगर उसके स्वार्थ की कहो या लिमिटेड चीज की कहो या विकारों की सिद्धि होगी। इसलिए उस बुद्धि को सरेंडर करो पहले, ये बुद्धि सरेंडर। फिर हमें दैवी बुद्धि बाबा की जो दे रहा है, बाबा अथा दे रहा है, वो धारण होगी। वरना जैसे फटा हुआ झोला होता है, उसमें ऊपर से डालते जाओ नीचे से निकलता जाएगा, थोड़ा बहुत एक दो रतन रहे बचे भी, या वो रतन बचे साथ में अहंकार भी बचा हुआ है, साथ में क्रोध भी बचा हुआ है, तो किसी ने उधार भी देना हो और उसके पास धन भी हो तो बैलेंस तो बराबर ही होगा ना। तो बिल्कुल ये ना रहे तभी हमारा शो केस का रूप बनता है। अब शो केस में ज्वेलर के जाओगे तो हीरे जवाहरात अच्छी तरह से एकदम एकदम सिस्टम से बने हुए सजा के रखेगा ना। इसलिए ये पांचों विकारों को निकाल कर और उसके बदले में फिर ये दिव्य गुण हमारे में आए और वो दिव्य गुण बाबा का एक एक रतन उसको हम कायम रखें, उसको हम हजम करें। जब बुद्धि में आ जाएंगे तो फिर जो भी संकल्प आएगा वो दिव्य गुणों के रंग में रंग के वाचा में आएगा। अब बाबा ने कहा बच्चे मीठा बोलो, ठीक है, कड़वा कौन बोलता है? जिसमें अहंकार और क्रोध होगा, बुद्धि का अभिमान होगा। अगर समझा कि हम बाबा के छोटे से बच्चे हैं और बाबा हमें कह रहा मीठा बोलो, देवता मीठा बोलते हैं, देवताओं का विशेष गुण है मुस्कुराना और मीठा बोलना, और हमें अब संकल्प आया किसी तरह से आ भी गया पिछले संस्कार के वश कि ये कुनीन है, अंदर से कड़वा निकला, तो बुद्धि उसको शुगर कोट कर देगी, है ना, तो बिल्कुल स्वीट बन के अक्षर निकलेगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे स्वीट निकलते निकलते स्वीट से आपकी लोग तारीफ करना शुरू कर देंगे। क्रोध वाले की कोई तारीफ थोड़ी करता है, अहंकार वाले से तो लोग दूर भागते हैं, लोभ वाले से भी भागते हैं। तो जब व्यवहार में आप देखेंगे कि उसका फल अच्छा निकल रहा है तो बुराई अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जैसे किसी चीज की जड़ खत्म हो जाए, उसको पानी ना मिले, उसको बढ़ने से रोका जाए तो मर जाती है। तो अगर संस्कार में कुछ है भी वो एक तो उसको हम योग बल से भस्म करेंगे, खत्म करें, लेकिन वैसे वो मर जाएगा अगर उसको बुद्धि का पानी नहीं मिलेगा और उसको वाचा और कर्मणा की शक्ति नहीं मिलेगी, खाद नहीं मिलेगी, प्रत्यक्ष नहीं होगा तो आप ही मर जाएगा, संस्कार वहीं खत्म हो जाएगा। इस वास्ते ये भी एक बढ़िया प्रोसेस है जिससे कि हम क्या करें कि हम इस प्रोसेस से अपनी बुद्धि को खाली करके पुराने को तो आने ही ना दे, उसको सफाई कर दे। जैसे कहते हैं ना दिवाली के दिन लोग सफाई करते हैं है? अच्छी तरह से। तो इसलिए बाबा ने कह रखा कि बुद्धि में क्या लाओ, तो बुद्धि में खाली तो नहीं रहेगी बुद्धि भी, तिजोरी तो भरी हुई रहनी चाहिए। अब तिजोरी में से बिल ना निकले बल्कि उसमें से रुपए निकले। एक तो उतना उधार के बिल निकल रहे हैं कि ये भी देना है, ये भी देना है, ये भी देना है, देना ही देना है। तो इसलिए अपनी बुद्धि के अंदर बाबा के रतन भरेंगे, इतने रतन हैं कि आपको बाबा कहता है सिर्फ तिजोरी को देख ही लो ना तो आपको नशा चढ़ जाए। इस्तेमाल करने की बात तो छोड़ो, अब किसी की बैंक की पासबुक होती है उसमें बढ़ता जाता है पैसा, पड़ा तो बैंक में है लेकिन वो खाली उसको खोल के देख लेता जब आती है पासबुक, वाह इतना ब्याज भी लग गया, 1,20,000 हो गए, उसको 1,20,000 का नशा चढ़ेगा। चाहे चल वही व्यक्ति रहा है फटे हुए कपड़े में है कि मेरा पड़ा है, इसी तरह से अब 1,50,000 हो गया तो नशा बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहता और ना से आप इन रत्नों को देख ही लो ना सिर्फ, तो भी आपको नशा चढ़ा रहेगा कि ये मेरे हैं। इस वास्ते ये आपको संतुष्टता देंगे, ये आपको प्राप्ति कराएंगे। अतः आप बुद्धि को पुरानी को सरेंडर, नई को इकट्ठी करके उसमें दिव्य गुणों को रत्नों को भरते जाएंगे भरते जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, बेफिक्र बादशाह, चलते फिरते जैसे होता है ना नशे में, निश्चित और निश्चिंत, क्योंकि बुद्धि अलाउ ही नहीं करेगी वाचा और कर्मणा को दिव्यता से हटने के लिए, और नीचे की चीज नीचे ही रह जाएगी, समझा, बुद्धि का डैम लग जाएगा। और डैम से क्या होगा, जितना भी पानी भरा हुआ हो, जितना चाहिए, जब चाहिए, जिस रूप में चाहिए, वो पानी जाएगा, खेती को हरा करेगा और बिजली फ्री में पैदा करेगा। इस वास्ते आप बुद्धि रूपी डैम को स्ट्रांग करेंगे तो कितना भी पीछे तूफान होगा, जितनी बारिश हो जाए, आगे तो बाढ़ कर देती है लेकिन वो वहीं रुक जाएगी, और आपको वक्त के ऊपर वो खराब चीज भी जो बाढ़ करने वाली थी, डुबोने वाली थी, वो काम में आनी शुरू हो जाएगी। ओम शांति। अब हमारी बहन जी आई हैं, ये आपको आगे बहलाने लेते।